In a few minutes from now, we are going to witness something that has never taken place in history ever. We are going to witness one of the greatest spiritual leaders of our times coming together and taking forward this movement of environment. So, zordar taaliyon ke saath. And I expect this as soon as they walk in. Now be welcoming some of India's most prominent philanthropists and spiritual gurus and entrepreneurs on stage, the visionary greats. On behalf of Acharya Lokesh Muni and Ahimsa Vishwabharti, we have with us today Sadhguru, founder of Isha Foundation, yogi, mystic, visionary, and best-selling author. Standing ovation, please, for all these great leaders. Swami Ramdev Ji, yogi people across the globe want to hear her. A huge spirited applause for all these great spiritual leaders gathered here today on this wonderful World Environment Day, organized and the initiative has been taken by Acharya Lokesh Ji. Can we hear it for him, please? Ahimsa Vishwabharti, as I just told you, yes. Louder applause, please. But before we begin the formal introduction for all these great spiritual leaders today, may I request Mr. Saurav Vohra to present the welcome speech from Ahimsa Vishwabharti. Mr. Saurav Vohra, please, can we have you on stage?
A spiritual welcome to everyone. Supremely blessed to be around our gurus on the occasion of World Environment Day. Ahimsa Vishwabharti Sanstha has been associated for last 10 years with environment conservation. And today we are blessed to have presence of respected gurus, Sri Acharya Lokesh Muni Ji, respected Sadhguru Ji, respected Swami Ramdev Ji, respected B.K. Shivani Ji. With folded hands, I, on behalf of all of you, welcome our gurus sitting here. Ladies and gentlemen, gurus are a miracle of God, and this moment is extremely special for all of us. A very green and healthy welcome to every one of you to celebrate the utmost important cause of today, which is day and night instigating us to take some action. This celebration today shall create awareness and improve the environment, which is truly a major issue and the need of our to be considered with utmost urgency. Well, statistics say that 92% people worldwide do not breathe clean air. Air pollution cost the global economy $5 trillion every year in welfare cost. We truly need to save the environment because we have no other planet to go than our planet Earth. All of us sitting here are ambassadors this evening. We can make changes in our everyday lives to improve our natural surrounding and our own health. We are beginning today with an initiative of distributing 5,000 plants for a greener and happier tomorrow. The way we think of giving our children the best of everything, education, knowledge, career, we need to give them a better planet Earth too, which is most essential. So thank you everyone, and I urge every single individual to explore renewable energy, green technology, and improve air quality in cities and countries. So let us all get together and unify an aim to raise global awareness on the World Environment Day. Thank you.
Thank you, Saurav, for those very, very inspiring words. Now, on behalf of Acharya Lokesh Ji and Ahimsa Vishwabharti, I extend a very warm welcome to Sadhguru, founder of Isha Foundation. A yogi, a mystic, a visionary, a best-selling author. Sadhguru is ranked as one of the 50 most influential people in India. From 2015 onwards, he has been on the list of 100 most influential living spiritual people in the world. Can we hear it for him? He was conferred the Padma Vibhushan in 2017 for excellence in social work, passionate about the cause of environment, and rallying for rivers, and unfailingly witty. Can we hear it again? A huge spirited round of applause. Ladies and gentlemen, Sadhguru, he will set a new mantra for today. और आज इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगी ऑन स्टेज अनिल मुरारका जी एंड जिग्नेश हिरान जी एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट डियर ऑनरेबल वेरी रिवियर्ड सद्गुरु टू प्लीज एक्सेप्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. ये एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अहिंसा विश्व भारती. वी आर रियली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस सद्गुरु. I now extend on behalf of Ahimsa Vishwa Bharati a very, very warm welcome to Swami Ramdev Ji, who I've always called. Swami Ji, aapko yaad hoga, hamesha maine aapko yehi kaha hai, yogi by destiny or chance and entrepreneur by choice. He should be taking lessons at IIM, yes? Popularly known as scientific sannyasi, and the founder of Patanjali Ayurveda, which has seen a meteoric rise in the past few years with revenues crossing crores. So with Swadeshi positioning widely acknowledged, Patanjali's path-breaking sales and his growth trajectory is known by all of us. He has indeed done India proud. Zordar taliya Swami Ramdev ke liye. Mere khayal aaj bachcha bachcha ghar mein anulom vilom aur yog seekh gaya hai. And of course, again, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has taken the movement to a next level. So, yahan pe main amantrit karungi Shri Mahendra Bhai Turkhiya ji and Shri Manoj Jain ji ko, and I request Swami Ramdev ji to please accept a small token, a small memento of our appreciation. Mahendra bhai, Turkhiya ji, Manoj Jain ke liye bhi taliyan ho jaye. Thank you. Thank you, Swami Ramdev. I'm sure a lot of people in the audience are going to ask you a lot of questions on whether you're looking the solar way soon. And now we have with us the very popular, the very eminent, the very versatile, Brahma Kumari Shivani Ji. Sister Shivani has been a favorite of millions, a practitioner, a teacher of Raj Yoga meditation. At the heart of the teachings of Brahma Kumari's World Spiritual Organization, a movement that has spread to 110 countries. Sister Shivani represents an organization that has promulgated and promoted green solar energy. Bahut naman abhinandan aapka aur zordar taaliyon ke saath zor se swagat kiya jaye Sister Shivani ka. Honored with the Woman of the Decade Achievers Award by ASSOCHAM's Ladies League in 2014. First telecast in 2007, her widely popular television show, Awakening with Brahma Kumari. Kitne log dekhte hain? Show of hands. Enjoys the distinction of having completed over 1,000 episodes and people asking for more and more. Can I hear that more? Zor se. Wonderful. Delighted to have such a lovely audience. She has been speaking on a wide spectrum of topics like spirituality, self-empowerment, aur aaj ye baat karengi aap aur humse paryavaran ke bare mein. I now request Srimati Kirti Damekani and Raki Bohra ji to please come and felicitate Sister Shivani. Kirti Damekani and Raki Bohra ji, bahut swagat aapka. Thank you so much, Sister Shivani, for accepting this small token of appreciation on behalf of Ahimsa Vishwa Bharati. And the President of India presented the Nari Shakti Award to Sister Shivani just last year on Women's Day 2019. Many more awards to you. We now come to the organizer of this event. Zordar Taali Ho Jai. Acharya Dr. Lokesh of Ahimsa Vishwa Bharati, born on this earth to extend to the world the message of peace and harmony and re-establish human values and communal integrity. Acharya Lokesh is a social reformer, a versatile thinker, a writer, a poet. For the last 30 years, he has been making efforts for establishing communal harmony. He has tirelessly completed the 20,000 kilometer walk to spearhead the movement of communal harmony and the first Jain guru ever to have donated his entire body for the noble cause of promoting organ donation. Zordar taaliyan ho jaye. How many of us can do it? Also the proud recipient of the last communal National Communal Harmony Award in 2010 by the Government of India and a crusader for animal rights. Bahut swagat karenge inka hum sabhi log, and main request karti hu Shri Kamal Jain ji ko aur Ganpat ji ko Thari ji ko to come on stage and felicitate Acharya Lokesh for this wonderful endeavor of getting four great spiritual leaders together to speak to all of you on how to preserve our Mother Earth. I request Acharya ji to please accept a small token. इस पूरे प्रोग्राम का संचालन सब कुछ श्रेय आचार्य लोकेश जी को. तो स्वच्छ पर्यावरण हम सभी का अधिकार है. आखिर कैसे निजात मिलेगी हमें इस प्रदूषण से. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टुडे एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन goes to Acharya Lokesh ji. आज पर्यावरण दिवस है. हम सभी यहाँ प्रकृति को बचाने की सोच रहे हैं और इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं. आचार्य जी, आपने आज के दिन देश के प्रतिष्ठित हस्तियों को इस विषय पे यहाँ निमंत्रण किया है उनका, तो इसके पीछे क्या सोच है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मंच पर उपस्थित परम पूज्य सद्गुरु जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, हमारी आदरणीय बहन वीके शिवानी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में विश्व की तीन बड़ी समस्याएं, एक है जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की, एक है हिंसा और आतंकवाद की, और एक है गरीबी की, अभाव की, असमानता की. किंतु अगर सर्वाधिक अकाल मृत्यु अगर किसी एक कारण से होती है तो वो है जलवायु परिवर्तन के कारण से. और ये समस्या केवल एक राज्य या देश की नहीं, पूरे विश्व की है. और यही सोच करके अहिंसा विश्व भारती ने एक प्रयास किया कि विश्वविख्यात वो धर्मगुरु एक मंच पर आए जिनकी आवाज सारी दुनिया सुनती है. और यही कारण है कि इस निमंत्रण पर, जहां पर अति व्यस्तता के बावजूद सदगुरु जी ने अपना समय प्रदान किया, स्वामी जी आज पूरे देश भर की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पतंजलि में चल रही है, उसके बावजूद यहां उपस्थित हैं. बीके शिवानी जी ने अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके सभी एक मंच पर आने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर प्रतिवर्ष प्रतिदिन जो है हमारे उपासना के स्थल पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं. और अगर धर्मगुरु अगर सही दिशा दे तो सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है. दूसरे में हम सब देख रहे हैं आज जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है, आप और हम सभी, अभी तो जून का महीना प्रारंभ हो चुका हुआ है और 50 डिग्री का टेम्परेचर को पार करके जा रहा है। चमचमाती बिल्डिंगों के बीच में चेन्नई शहर में मैंने सुना है कि 5000 टैंकर रोजाना सड़कों पर दौड़ रहे हैं पानी की आपूर्ति करने के लिए। दिल्ली के एयरपोर्ट के बगल का नया बसा हुआ द्वारका जो है पानी के लिए जूझ रहा है। ये सारी भयावह स्थितियों के अंदर इसके समाधान के लिए ये सोच करके एक विनम्र प्रयास किया और आज इस मंच से ये विश्वविख्यात सारे धर्मगुरु, जिनको लाखों की संख्या में लोग रोजाना यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फॉलो करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनसे प्रेरित होकर के ये कार्यक्रम आज यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, यहाँ से एक अभियान शुरू होने वाला है। जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं उन हजारों लोगों के अलावा ये संचार माध्यमों से करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम लाइव पहुंच रहा है और 1 करोड़ से अधिक लोग आज शपथ लेने वाले हैं इस कार्यक्रम से। तो इसी के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सद्गुरु, रैली फॉर रिवर्स, अ कैंपेन दैट हैज फ्लडेड आवर टाइमलाइंस विद सेलिब्रिटीज गार्ब्ड इन ब्लू, aims to tackle the urgent matter of the nation's dying rivers. Organized by Isha Foundation, it has seen the support of both actors and politicians. How exactly are we going to save these rivers?
The rivers have always nurtured our lives. Forever, rivers have been the basis of our civilization. But today we are talking about saving these rivers, which have been the basis of our existence and flourishing of our civilizations. This dire situation has come. We must understand this in India, because most of the solutions that we have brought to this nation is transplanted largely from Europe or North America, which are temperate climates. The nature of those rivers are very different. In the sense, most of the rivers in the world in the temperate climate are fed by glacial waters. The Indian rivers, only 4% of India's rivers are glacial water. Rest of it is rainwater stored in the land and slowly let out. This slow letting of the water from the land can only happen if there is substantial vegetation. When there was enough vegetation, the same monsoons, in India the precipitation or the rain is approximately only 45 to 50 days in a year. This 50 days of rain, we are supposed to hold it in the land for 365 days. There is no rocket science to this, simply we have to increase the vegetation. The green cover on the planet or in the country has to go up. Right now, 85% of India's land is being used for agriculture, because we are doing agriculture in very inefficient ways. The way we did subsistence agriculture 1,000 years ago, we are still doing it the same way, unnecessarily scratching the land in the name of agriculture. Neither the farmer is flourishing, nor are we saving the ecological fundamentals in a proper way. So the most important thing is to put back at least 30% of the land, or 1/3 of the land should go under shade. The only way you can put this back and you can hold water in the soil is, soil must have substantial organic content. Organic content to the soil comes only through the leaves from the tree and animal waste. Trees have gone long time ago. Animals are all traveling abroad. How do you enrich the soil? The soil has become weak, it cannot hold water, there is no way it can hold water. Just to give you an example, in the Ganga basin accounts for 25% of India's geography and 33% of India's food production. In the Ganga basin, we have removed 92% of green cover in the last 50 years. What is our plan really for this nation? 92% we've removed. Because of this, there is no way if it… In the last 100 years, the monsoon, the volume of water coming down in the form of rain on this subcontinent has not come down. It's about the same. Small fluctuations happen year after year, but it's on an average, it's about the same. So the rain has not gone down, the amount of water falling upon the land has not gone down. Our ability to hold it in the land is gone, simply because there is no vegetation. So, can we build forests once again? No, because the population pressure is heavy, you cannot build forests. So the best thing to do is to go to agroforestry, which will be a miracle for the farmer. We have set up these examples in Tamil Nadu, where a farmer's income can multiply manifold if he goes into tree-based agriculture. And India is right now importing over 45,000 crores worth of timber, over 100,000 crores worth of timber products. If we liberate this right now, this regime that is there, that even if you grow a tree on your land, you cannot cut it. Because of that, nobody wants to grow it. So it's very important we go through a policy change where people will be encouraged to grow trees and harvest trees for their own well-being. If you do not do this, you cannot put green cover back on the land. Without green cover, there is no way you can hold rainfed trees flowing throughout the year, because our glacial water is only 4%, as I said.
Bilkul sahi, jaise aapne kaha, Sadhguru has said, and I quote him, "The simplest solution to rejuvenate India's rivers is to maintain a minimum of 1 kilometer tree cover on the river sides. Forest trees can be planted on government land and fruit trees on farmland." Hum aise kitne log ye karne ja rahe hain? Can I see a show of hands, please? Upar sab log apne haath dikhaiye, if you agree and resonate with this movement. Ab agla sawal main leti hoon Baba Ramdev ji se. Swami ji, yog, agriculture, health and environment, kis tarah samjhayenge aap yog aur paryavaran ke rishte ko?
पहली बात तो ये है कि योग में हम भस्त्रिका करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. और लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी ने ये सुबह सुबह ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं, ऑक्सीजन सुबह सुबह पी जाते हैं, बाद में हमारे लिए एक आइफोन ऑक्साइड छोड़ देते हैं. तो इसके लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है. नहीं तो लोग मुझे कोसेंगे कि स्वामी जी ने नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है. प्रकृति को हम मां कहते हैं, और प्रकृति से जैसे दूर हटते हैं तो विकृति आती है. और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ही चार हैं, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति और सम्यक संतुलित प्रकृति. यही है भारतीय संस्कृति. मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, दीज आर द फोर फाउंडेशन ऑफ आवर इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हेरिटेज. अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा तो इन शहर के लोगों को जरूरत है. गांव के लोगों के पास भी फिर भी पेड़ हैं. हर घर में कम से कम 2, 4, 5 पेड़ होते हैं. उस किसान के खेत में 10-20 पेड़ होते हैं. यदि उसका बागवानी का काम है तो उसके पास में 100, 200, 500, 1000 पेड़ होते हैं. लेकिन आपके पास में 5-10 गाड़ियां होती, थोड़े और अमीर हो जाते हैं तो 2-4 कुत्ते होते हैं. और अमीर हैं तो आपके घर में 2-4-5 एसी लगे हुए होते हैं. ये एसी भी आपकी ऐसी तैसी करते हैं. आपके पास क्या है? आपके पास बाइक है, कार है, एयर कंडीशंस हैं, और भी रेडिएशन छोड़ने वाले 10-20 इंस्ट्रूमेंट घर में लगे होते हैं, कहीं लैपटॉप है। अभी मैं परसों सुन रहा था, एक बच्चा पढ़ते पढ़ते लैपटॉप के ऊपर ही उसको नींद आ गई और सिर ऐसे रख करके सोया, उसकी आंखों से उसके नाक से खून निकला और डेथ हो गई। इतना ज्यादा रेडिएशन, इतने ज्यादा पोल्यूशन, हम ये सोचते हैं कि हम अमीर हैं। मैं सोचता हूं कि आप दुनिया के सबसे दरिद्र लोग हो जो मुंबई में रहते हो। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ अपने दुर्भाग्य के ऊपर। देखो भाई, पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया की आने वाले समय में तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, नेचर एंड एनवायरनमेंट फर्स्ट, डेटा बैंक, कॉलोनाइजेशन ऑफ डेटा इज सेकेंड, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थर्ड। और इन तीनों के ऊपर हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। यदि हमने और मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी एंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस अर्थ और फॉर दिस यूनिवर्स, ये तो शब्दों में नहीं कह सकते। धरती को खतरा भी कोई जीव जंतुओं से नहीं है, शेरों से नहीं या हाथियों से नहीं है। और इस धरती को खतरा यदि मनुष्य से है तो उसका समाधान भी मनुष्य के पास ही है। और इसको कलेक्टिवली सोचना ये पड़ेगा कि हमें एक तय करना है आज कि यदि मैं समस्या का समाधान नहीं हूं तो मैं एक समस्या हूं। इसलिए आज सब समाधान बनकर के यहां से लौटेंगे, बिल्कुल, कि मैं क्या सॉल्यूशन कर सकता हूं। तो आप लोग से मैं चार पांच छोटी छोटी बातें कहता हूं जो मैं खुद करता हूं। जहां तक हो सके हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जितना आपके लिए जरूरी है उतना सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में होने चाहिए। मैं जिस गाड़ी में बैठता हूं 99%, कभी कभी बड़ी गाड़ियों में बैठना पड़ जाता है, वैसे मैं विदेशी गाड़ी में नहीं बैठता हूं, वैसे इस मेरा आपके मैं इस बारे में ज्यादा अभी नहीं बोल रहा हूं। मैं 99% लगभग 15 किलोमीटर की एवरेज देने वाली गाड़ी में बैठता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं पेट्रोल कम खर्च करता हूं, डीजल कम खर्च करता हूं। मुझे बचपन से ही गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। किसी किसी घर में मैं आदमी दो हैं, गाड़ियां पांच हैं। तो अभी जितनी आ गई या तो किसी ट्रस्ट में चैरिटी कर देना, या कम से कम आगे ज्यादा गाड़ियां मत खरीदना। सिंगापुर की तरह रूल तो नहीं है यहां कि ज्यादा गाड़ियां आप नहीं खरीद सकते, उनकी पार्किंग के ऊपर भी ज्यादा वो नहीं है, फीस नहीं है, गाड़ियां कम खरीदी। मैं कभी एसी का प्रयोग नहीं करता हूं, एमरजेंसी को छोड़ के, जैसे अब यहां हो रहा है तो ये नेसेसरी है। मैं एसी का प्रयोग ज्यादा नहीं करता, छोटी छोटी बातें, इससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अभी भी 25 इयर्स के लोग आकर के मेरे से यहां रेसलिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बॉडी को एकदम फिट रखता हूं, मैं एसी की ऐसी तैसी करके रखता हूं, रोज एक बार पसीने से नहाता हूं, सुबह उठ करके दौड़ लगाता हूं, दंड बैठक लगाता हूं, सूर्य नमस्कार करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मेडिटेशन करता हूं। एसी का प्रयोग कम से कम कीजिए, कम लेस जितना हो सके मैं इसका उपयोग कर, मैं ऐसा जीता हूं। मैं फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं घड़े का ही पानी पीता हूं, घड़े का पानी पीता हूं। फिर मैं स्नान करता हूं तो कम पानी का इस्तेमाल करता हूं, पानी के हजार में कमी नहीं है, मैं कम पानी का इस्तेमाल करता हूं। हमारे बहुत से जैनी मुनि तो शायद नहाते ही नहीं है जिंदगी में, उनका कुछ लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को अलग ढंग से साधा हुआ होता है। प्रकृति में नेचुरल बात तो सारे जीव करते हैं, एक दो जीवों को छोड़ करके, मैं थोड़ा सा मजाक की बात है, कोई बुरा मत मानना। माने ये जो आर्टिफिशियल बात है वो भैंस सबसे ज्यादा करती है, बहुत लोगों को बहुत देर में समझ में आएगी घर जाके, बोले गई भैंस पानी में। मींस पानी के समय कम पानी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही जितना हो सके अपने तरफ से आप कंट्रीब्यूट कीजिए। मैंने अपने पतंजलि में रात को बहुत लाइट जलाते थे लोग कि ऐसे जगमग दिखे, करीब 50 लाख रुपए की सेविंग की है मैंने मंथली लाइट कम इस्तेमाल करके, 50 लाख मंथली लाइट की सेविंग किया। इससे ग्रीन हाउसेस गैसेस कम बनेगी, कोयला कम फूकेगा, पोल्यूशन कम होगा, हमारा कर्तव्य है। और अभी तक जैसे हमारे पूज्य श्रद्धे सदगुरुदेव जी का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, इन्होंने अपने फॉलोवर से करोड़ों पेड़ लगवाए, ये इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। हर साल पूज्य आचार्य भाषण जी की 4 अगस्त को जो उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो पूरे देश में कम से कम 20-25-50 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियां लगा करके।
बिल्कुल, और इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए स्वामी रामदेव जी के लिए। वंडरफुल वंडरफुल थिंग्स दैट ही टोल्ड अस। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया, जल ही जीवन है, जल से ही आज है, जल से ही कल है। तो मैं यहां जानना चाहूंगी सिस्टर शिवानी जी से कि जल और जीवन को किस तरह आप समझाएंगी।
ओम शांति। बचपन से हम सब ने सुना है और प्रयोग भी किया है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी, अच्छे से बोलते हैं एक बार इकट्ठे, जैसा पानी वैसी वाणी। और हम सब ने इसका अनुभव किया है कि हमारे मन की स्थिति का प्रभाव अन्न पर भी पड़ता है, पौधों पर पड़ता है और पानी पर पड़ता है। जब हम एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड स्पेशली जैसे निधि जी ने कहा पानी, हमारा हर थॉट आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूं, अगर आपको रेडी हां लगे, आपने अनुभव किया हो तो हाथ उठाइएगा। जब हमारा थॉट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, टेंशन वाला या डर वाला, तो क्या हम थोड़ा सा लो फील करते हैं उस टाइम पे? किस किस ने एक्सपीरियंस किया? यस। जब थोड़ा सा थॉट अच्छा नहीं होता तो हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है, किस किस ने एक्सपीरियंस किया? यस। जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो क्या उन तक हमारी एनर्जी जाती है? और जब हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं और उनसे बात करने के लिए फोन उठाते हैं, वो हमें ही फोन कर देते हैं, मतलब हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंच गई, किस किस ने एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस किया। किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया कि आपके घर में जो पेट्स हैं उन पर आपके घर के वाइब्रेशन का असर पड़ता है? अगर घर में गुस्से में ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां का जो पेट होगा ना, वो भी थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया। और किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया कि जिन पौधों को आप ग्रो करते हैं उनके साथ अगर आप प्यार से बात करते हैं और उसको प्यार से नर्चर करते हैं, या आप सिर्फ एक रूटीन की तरह ऐसे पानी डाल देते हैं, दोनों में एक फर्क पड़ता है पौधों के ऊपर, एक्सपीरियंस किया। एंड विच मीन्स एनवायरमेंट पे जो सबसे ज्यादा असर है वो है हमारी सोच का। तो एनवायरमेंट के ऊपर सबसे डीप कनेक्शन है हमारी इमोशंस का। तो अगर हम अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ पर्यावरण को बाह्य रूप से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हम संपूर्ण रिजल्ट को नहीं पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। पानी पानी पोल्यूटेड है, नॉट जस्ट बाय केमिकल्स बट बाय आर इमोशंस टुडे। हम सब हरिद्वार से पानी लाते हैं और पानी मंगवाते हैं और हम उसको हाई एनर्जी वाटर कहते हैं। वो हाई एनर्जी क्यों है? क्योंकि गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है? आरती चल रही है, पूजा चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है, जप चल रहा है, तो उस पानी का वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है कि वो पानी किसी पे ऐसे छिड़को या दो घूंट पिला दो तो उसका वाइब्रेशन उठ जाता है। मुंबई तट का पानी कैसा होगा? यहां भी तो पानी है ना सामने। जैसे हमारी शहर की इमोशंस, और हम में से मेजोरिटी आज कहते हैं स्ट्रेस किस किस को होता, गुस्सा किस किस को आता, चिंता होती है, तो हमारे शहर के पानी में क्या होगा? हमारे शहर के पानी में क्या होगा? चिंता होगी, गुस्सा होगा, डर होगा, ईर्ष्या होगी। इसीलिए जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई जाता है तो उससे पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीकर आए हो। तो हमें अपने एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इमोशनल पोल्यूशन से बचाना है, ताकि हमारे पानी की, हमारी प्रकृति की जो वाइब्रेशन है वो इतनी ऊंची उठ जाए कि उस पानी को जो पिए उसके मन की स्थिति बदल जाए, उसकी वाणी बदल जाए। दैट इज द पावर वाटर हैज, बट वी नीड टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ दैट वाटर। दैट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे मन की स्थिति से प्रकृति बनती है, पर्यावरण बनता है। और अगर हम सब आज अपने मन की स्थिति के अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार है, कौन कौन गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार है? अच्छे से, यू आर लाइव ऑन नेशनल टेलीविजन टुडे, एंड सो व्हेन यू गो होम एवरीबडी इज गोइंग टू से, मैंने देखा आपने हाथ उठाया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे आज से। अगर हमने आज एक चीज का भी त्याग किया, हम बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रकृति की इमोशनल वाइब्रेशन को रेज करने का। तो उस तरह की प्रतिज्ञा इकट्ठे मिलकर आज करते हैं कि हम अपने पर्यावरण से, वाइब्रेशन से, गुस्सा, नफरत, चिंता, डर, इन वाइब्रेशंस को खत्म करते हैं। तो वी हैव द पावर टू क्रिएट अ वेरी वेरी पावरफुल, प्योर एंड ब्यूटिफुल एनवायरमेंट।
थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, हम सभी आज थोड़ी देर में प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्वामी रामदेव जी ने बताया लाइट पोल्यूशन, हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस हॉल नो दैट टर्टल्स एंड स्पैरोज इन थाउजेंड्स thousands of birds are dying because of light pollution, and that too happening in Mumbai suburbs. How many of you know this? Haath upar kare. I want a show of hands. Ye jo blinding lights hum log lagate hain jagran mein ya shopping malls mein, we actually do not require those, and there are some birds, ladies and gentlemen, whose migratory path is that of the moonlight, and they somehow do not understand the difference, and they are dying in thousands. Aaj ye mudda bhi bahut zaruri hai. My question now goes out to the very honorable Sadhguru ji. So my question is, and I think I should be remembering it, and I don't need to flip pages, that isi hall ke bahar, theek bahar, we have the beach outside, and wahan pe marine life ka bahut zyada nuksan ho raha hai, and that is why I want you to please suggest ways of how we can prevent marine life from dying.
Well, Mumbai city generates 200 million liters of sewage per day. All of it is going straight into the ocean. In many ways, Well, I'm your guest right now in the city, but I have to tell you this, probably this is one of the most irresponsible cities on the planet when it comes to ecological concerns. Well, you're busy because stock market is hitting 40,000, all right. So, yes, economic development, economic activity is important, but economic activity is not a goal by itself. It is only a means to live well. It is not a goal by itself. So, to live well, we need clean air, pure water, healthy food, and all other life should flourish. This is one thing that we need to understand. There is enough data to show that if all the worms, the worm in the earth and in the ocean, everywhere, there are worms. If all the worms die today, anywhere between 14 to 18 months, all life on this planet will end. If all the insects die, in 4 to 6 years, all life on this planet will end. But if all human beings die today, the planet will flourish. So this sense of self-importance that human beings have gathered about themselves is ridiculous, to say the least. In this cosmos, in this cosmic space, this solar system itself is a small speck. It's a very tiny speck in the cosmos. In that tiny speck of a solar system, planet Earth is a micro speck. In that micro speck, Mumbai city is a super micro speck. In that, you are a big man. This is not a small problem, this is a very big problem. Lack of perspective as to who we are in this world, that we are here for a brief amount of time, very brief. If you're living a joyful life, it's very, very brief. If you're living a miserable life, it's a bit long. Have you noticed this? When you're joyful, you're very joyful on a particular day, 24 hours just passed off like a moment. You're miserable, you're depressed, one day feels like an eon. So only miserable people can live a long life. And when you're miserable, you do nasty things to everything around you. When you're happy and joyful, you do wonderful things to everything around you. Hello? So, marine life, well, it's been a major source of food for humanity. That also we've been overdoing. To get a tail, to get the fin of a shark, only the fin is a delicacy. To get the fin of a shark, we kill the whole shark. The word shark in human languages has become, as shark means a ruthless killer. I think we should rename human beings as sharks and sharks as something else, because we are the worst killers that you can find on this planet. They kill only for their food, we kill simply, without any purpose. So marine life suffering is on many different levels. There is various levels of pollution, as I said, sewage is going. Fortunately, Maharashtra government is right now making efforts. In another 4 years, at least 70% of the Mumbai sewage will be treated before it goes to the ocean. Those steps have been taken. It'll take another 4 years to complete the projects. So, Marine life is in serious danger around the world due to variety of reasons. One is maritime transport, another is military experiments happening. If you want to try anything, you try it in the ocean. Another is sewage going in. Today plastic has become a major process of pollution. See, everything that's given to us, the best things, we have a way of turning it against ourselves. For example, plastic. This is a unpopular thing to say. Plastic is one of the best substances human beings have manufactured. Because if you handle it responsibly, you can recycle the same material 1,000 times if you want. Use it and reuse it and reuse it. But the irresponsible usage has made plastic one of the most dangerous substances on the planet. Plastic is not dangerous, irresponsibility has always been dangerous, and that is what we are paying for. So, we built cities so that we could live in more comfort and well-being, but these cities are becoming hotbed of suffering in so many ways. I don't know what's the percentage of population. A percentage of population in the city is living in slums, in the worst possible conditions. Well, our economic activity is unplanned, and our economic activity is not only unplanned on a national level, on individual level also, people are not looking at economic activity as a means for well-being. They think it's an end goal of their life. How much ever you gather, there is no container service in the end. Hello? I'm just informing you. There's no container service in the end to pack up whatever you have and go somewhere. But still most houses have turned into warehouses. So, in this mega competitive exploitation, you're not doing what you want to do. If you do what you want to do, it's okay. You're trying to outdo somebody who's next to you. In this, it's going into madness.
Bilkul, aur jaise Sadhguru ne kaha, Mumbaikars, how many of you believe that you are going to change today and going to take that pledge today? A very, very valid message for the entire population of Mumbai today. Please protect your beaches. So, aap mein se kitne log beach jaane wale hain aaj? Afrosh Shahwa safai kar rahe hain aur dikhai de rahe hain har channel pe. But besides that, I think he's doing a wonderful job. So, how many of you, can I see a show of hands, please? According to what Sadhguru has advised today.
No, no, I have not advised him anything. I am not giving any advice.
But we need to…
All I am saying is, to be human means the significant difference between us and all other creatures on the planet is, we can conduct every aspect of our lives consciously. We do the same things the animals do, we eat, we breed, we die. Only thing is, we can conduct our life consciously, that is a big difference. This is all we need to do, that we conduct our life consciously. If we conduct our life consciously, we will do everything to the extent it is necessary, including the breeding process.
Bilkul, absolutely. Aur isi ke saath Acharya Lokesh ji, main aapse janna chahungi, Bharatiya Sanskriti aur Jain Dharm ke vishw prachar mein aap saalon se lage hue hain. 20,000 kilometer ki paidal yatra aapne ki. Hame bataiye, Jain Dharm ke anusar paryavaran ki sabhi samasyaon ka samadhan kaise hoga?
इन महान विद्वानों के बीच में बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने सत जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत की प्रस्तावना की. उन्होंने कहा पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय. यानी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसका अनावश्यक उपयोग मत करो, इसका अनावश्यक छेदन भेदन न करो,
और आपने देखा जब मुझे पौधा भेंट किया जा रहा था तो मैंने दूर से उसको सम्मान रेस्पेक्ट देते हुए एक पत्ती तक को तोड़ना नहीं, क्योंकि वनस्पति स्वयं जीव है, हमारी तरह इसकी अंदर चेतना प्रवाहित होती है। ये 2600 वर्ष पूर्व हमें कहा गया। पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। पिछले दिनों जापान के एक वैज्ञानिक ने महर्षि पानी को तोड़ा और उन्होंने उसका क्रिस्टल बनाया और बनाते वक्त उस पर लव लिखा। वो क्रिस्टल बड़ा खूबसूरत, मनमोहक, लुभावना, अभी खरीदने का मन हो इतना खूबसूरत बना। और दूसरी बार उन्होंने उस पर जो है हेट लिखा, क्रिस्टल एकदम, हमारी बहना जैसे कह रही थी कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, पानी भी उस भावना को ग्रहण करता है। तो सनातन परंपरा हो या जैन दर्शन हो, हमारे यहां पृथ्वी की, वृक्ष की, सबकी पूजा की गई और यह कहा गया कि पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं और असीम इच्छाओं की पूर्ति ससीम पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए हम भोग और उपभोग का सीमाकरण करें। महावीर ने यह दर्शन दिया। हालांकि उनका डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, धर्म का विकास से कहीं विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है विकास की नींव अध्यात्म के आधारित होती है तो वो विकास जीवन में वरदान बनता है। और नींव अध्यात्म आधारित नहीं है तो कभी कभी वह वरदान की बजाय अभिशाप बनता है। आप उपनिषद को पढ़िए, हमारे उपनिषदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और यह कहा गया कि जहां पर इन चारों के बीच में संतुलन है वहीं पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण है, स्वस्थ समाज की संरचना है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, धर्म का विकास से विरोध नहीं है। उस समय के एक जैन श्रावक का वर्णन मिलता है, आनंद श्रावक, अथा संपदा थी। आज के युग के आपके बिल गेट्स या अंबानी अदानी कहीं ठहरते ही नहीं उसके सामने। पर अंतर क्या था? व्यक्तिगत भोग उपभोग के लिए एक अंगोछा है, एक लंगोटी है, कुछ संसाधन है, बाकी जो कुछ है समाज के लिए, देश के लिए। ये ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत है, मैं समझता हूं अगर हम उस महान सनातन परंपरा को, महान जैन दर्शन को अगर आत्मसात करें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः मिल सकता है। विकास से विरोध नहीं है, किंतु ये जरूर है हमारे भारतीय दर्शन में केंद्र के अंदर आत्मा रही है, पदार्थ परिधि में रहा है। आज कठिनाई क्या है? केंद्र में पदार्थ आ गया और आत्मा परिधि में भी ढूंढने जाएं तो मिलनी मुश्किल है। मैं अगर स्वामी जी की भाषा में कहूं, दो तत्व है, एक जीवन है, दूसरा आजीविका है। मेरा प्रश्न है आपसे, कौन किसके लिए है? जीवन के लिए आजीविका है या आजीविका के लिए जीवन है? बस यही जैन दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है, यही सनातन दर्शन है। बंधुओं, केंद्र में आत्मा रहे, पदार्थ परिधि में रहे।
बहुत खूब। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आई थिंक महात्मा गांधी ऑल्सो सेड दैट देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। आई थिंक वी नीड टू अडैप्ट दिस प्रिंसिपल in our lives today to protect our Mother Earth, as we have no planet B, ladies and gentlemen. And on this, ab main janna chahungi Swami Ramdev ji se, aapne natural honey, natural products, natural agro pe bahut zor diya hai, to ise aap kis tarah aaj share karenge with a billion plus Indians who will be watching you today?
सब महापुरुषों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर आपको काफी कुछ प्रेरित किया है, और जैसे मैंने पिछले क्रम में कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने बाहर की चीजों के बारे में बताया। हम एसी से लेके, गाड़ी से लेके, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो अभी पूज्य लोकेश मुनि जी कह रहे थे, अपने मन में एक बात लिख लेना, अपने प्राणों में, आत्मा में, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? इसको अपरिग्रह भी कहते हैं हमारे यहां योग में। यदि मेरा गुजारा चार कपड़ों में हो सकता है तो 40 जोड़ी कपड़े नहीं चाहिए। अब इसका संबंध नेचर एनवायरनमेंट से सीधा सीधा। मैं आपको ये कह एक बड़ी दृष्टि है और सबको समझ में आने वाला सूत्र है हर जगह। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बाबा जी आप ये लकड़ी की खड़ाऊ क्यों पहनते हो? अब इसमें कोई कहेगा जी लकड़ी तो पेड़ से बनी है तो थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन इसमें भी हुआ होगा। तो पेड़ भी किसी प्रयोजन के लिए बना है, यदि उस पेड़ की मृत्यु के बाद उसकी लकड़ी प्रयोग में आती है तो कोई। और ये मेरे खड़ाऊ लगभग 10 साल चलती है कम से कम, ना कम से कम बता रहा हूं। जो सामंतवादी ताकते हैं वो दुनिया को एक बाजार समझती है। मैं योगी होकर उद्योग भी करता हूं और अपने वैयक्तिक संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, इस राष्ट्र की समृद्धि और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए। और आज आपसे कुछ बातें कह रहा हूं। हम अपने फिर वापस आइए अपने ऊपर, हर व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। कुछ हमें व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सार्वजनिक सामाजिक प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सरकार के स्तर पर प्रयास होंगे, कुछ गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसीज होंगी, कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ईशा फाउंडेशन है, पतंजलि पीठ है, ब्रह्मा कुमारी है, जैन विश्व भारती है, हैं जी अहिंसा विश्व भारती है, तो इंस्टीट्यूशनल भी प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सोशल अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जैसे पूज्य महाराज श्री ने भी कहा कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो इन रेस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है हमारा वो बड़ा डेंजर है। देखो हम केशकांति शैंपू बनाते हैं, केशकांति हेयर ऑयल भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 99% लोग ज्यादा शैंपू का इस्तेमाल करते हैं। एमएनसी वाले चाहते हैं हेड एंड शोल्डर वाले, सनसिल्क वाले और क्लिनिक प्लस वाले कि ज्यादा से ज्यादा शैंपू लगाओ, उनकी बिक्री बढ़े। मैं कहता हूं कम से कम शैंपू लगाओ। आप एक बूंद शैंपू की, एक बूंद हैंडवाश की डालते हैं तो कम से कम 100 लीटर पानी को आप खराब करते हैं। मैं मानता हूं कि जो हमारा इमोशनल पॉल्यूशन है वो थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन, वो एक्शन में बदलता है। वो जरूरी है उसको दूर करना जैसे बहन शिवानी जी ने कहा, लेकिन एक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन तीनों को कंट्रोल करना। ये जो एक सोच है उपभोक्तावादी सोच एमएनसीज की, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सारी जितने भी ये ब्रांड्स हैं उपभोक्तावादी सोच को बढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं आपसे वैयक्तिक जीवन में तप करो। श्री अरविंद ने हमको एक बड़ा सूत्र दिया है, उन्होंने इस बात, वैसे सब महापुरुष भगवान महावीर से लेकर के सब महापुरुष यहां पर बैठे हैं, सबका ही एक सूत्र है, वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा घटक और सबसे बड़ा घटक है तो वो हम इंडिविजुअल हैं। तो अपने ऊपर हम काम करेंगे। मुझे लगता है आज का ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ एक्शन जो हमें लेना है स्वयं से शुरू करेंगे, बहुत सारे अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे और इसको खुद को आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपको खुद आत्मसंतोष होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्वामी जी ने कहा वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड वी नीड टू टेक दैट प्लेज टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। और जैसे आपने कहा आपने कोलगेट का गेट बंद कर दिया, आप एक चीज भूल गए, नेस्ले की चिड़िया उड़ा दी। हाँ, और किस किस को देश से बाहर करना जा रहे हैं ये हम बाद में पूछेंगे। और मेरा अगला सवाल सिस्टर शिवानी को, हाउ कैन यू हेल्प अस ग्रीन द वे पीपल थिंक दिस एंटायर हॉल, बिकॉज यू आर नोन फॉर योर थिंकिंग प्रोसेस, सो हाउ डू वी थिंक ग्रीन इज वॉट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and I don't think we have anybody better than you to explain this.
along with thinking green, we need to first think clean. Clean thinking hogi, to green thinking to apne aap ho jayegi. Jab prakriti ka dhyan rakhne ki baat aati hai, sadgi ki baat aati hai, simplicity, wo sab tabhi ho paata hai, jab andar ki atmik sthiti simple hai. Swami ji ne bahut pyar se pucha, jab char kapdon mein guzara ho sakta hai, to 40 kyun rakhte hain? Answer ye hai ki log kya kahenge. Yehi answer hai na? कि लोग क्या कहेंगे अगर हम फिर से वही
मैं 40 साल से दो ही पहन रहा हूं मुझे किसी ने नहीं कहा और आप भी यही दो पहन रहे हो ऐसे एक ही कलर के सेम डिजाइन नो चेंज इसलिए आंतरिक चेंज बड़ा है
अब जब स्वामी जी को सुनेंगे तो फिर सब लोगों को लगेगा तो मतलब हमें भी ऐसे ऑरेंज कपड़े और वाइट कपड़े पहनना है हमने सन्यासी बनना है क्या एसेंस लेते हैं बात का एसेंस किस जीवन में सिंप्लिसिटी आज हम कंपटीशन की वजह से इतना एक दूसरे की देखा देखी इतनी सारी चीजें करते हैं और करने से पहले एक क्षण भी सोचते नहीं कि क्या ये मेरे लिए सही है मेरे परिवार के लिए सही है मेरी सृष्टि के लिए सही है सिर्फ इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने किया था तो फिर हमें भी करना है और अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे तो जब आंतरिक स्थिति खाली होती है तो खुशी के लिए औरों का कंपैरिजन एंड औरों से कंपटीशन। तो जब हम उस दौड़ में चल रहे हो तो सृष्टि के बारे में सोचने का समय या ध्यान ही कहां आएगा हम तो औरों की से आगे भागने में लगे हुए हैं टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल वी नीड टू फर्स्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ टू टेक केयर ऑफ द प्लैनेट We need to first start taking care of ourselves. क्योंकि जब आत्मा अंदर से संतुष्ट और खुश नहीं होगी उसके पास ताकत ही नहीं होती है किसी और के बारे में प्रकृति के बारे में या सृष्टि के बारे में सोचने की इतने सारे गहरे एग्जाम्पल हमने आज सुने क्या हमने कभी चेक किया सारा दिन में हम कितना पानी यूज कर रहे हैं कितना वेस्ट कर रहे हैं ध्यान ही नहीं जाएगा दूसरी चीज की तरफ क्योंकि यहां पर हलचल है जब यहां पर हलचल होती है तो दूसरी चीजों का ध्यान रखने की ताकत आत्मा के अंदर नहीं होती है इट्स कॉल्ड अ सिंपल वर्ड विच इज कंपैशन फटीग कंपैशन की कमी है आत्मा के अंदर क्योंकि आत्मा खुद ही थकी हुई है तो जब हम थके हुए होते हैं थके हुए मतलब मन से थके हुए तो सद्भावना और शुभ भावना हम दे नहीं पाते क्योंकि हम प्रकृति को लोगों को देने की क्षमता नहीं रखते हम तो सबसे सिर्फ मांग रहे हैं मुझे चाहिए 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 क्योंकि मैं खुद ही खाली हो तो आज जब हम इस तरह से इकट्ठे हुए पानी बचाना है पौधे लगाना है हमने प्रतिज्ञा भी की हाथ भी उठाए लेकिन जाने से पहले इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारणा बनाकर अगर जाएंगे तो हम सिर्फ पर्यावरण को नहीं बचाएंगे आज नहीं बचाएंगे हम अपनी विल पावर को इतना बढ़ाएंगे कि फिर लोग चाहे कुछ भी कहें हम अपने तरह से जीवन जिएंगे मुंबई सिटी देश का फैशन कैपिटल है राइट फैशन कैपिटल ऑफ द कंट्री तो यहां पे जो फैशन क्रिएट हो जाए पूरा देश बहुत जल्दी से कॉपी कर लेता है तो अगर मुंबई सिटी सिंप्लिसिटी को फैशन में ले आए पूरा देश कॉपी करेगा उसको वो तब होगा थोड़े दिन पहले मैं टेलीविजन के इंटरव्यू में गई तो बहन मुझे बहुत प्यार से पूछती है आप इतनी बोरिंग जीवन कैसे जी सकते हैं आपके जीवन में कोई कपड़ों में रंग ही नहीं है इतनी बोरिंग लाइफ आपकी खुशी कहां से आती है आई सेड व्हाई खुशी कहां से आनी थी तो कहती खुशी तो उसमें आती है ना जो कपड़े हम पहनते हैं कितनी बड़ी गलत फहमी है कि खुशी मेरे कपड़ों में है कपड़े खुशी के लिए नहीं बनाए गए थे कपड़े शरीर को ढकने के लिए और आराम देने के लिए बनाए गए थे फोन एक दूसरे से बात करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसी फोन को हमने स्टेटस सिंबल बना लिया। तो हमने कहा छोटा फोन यूज करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो इसलिए हम हर 6 महीने बाद और नेक्स्ट वर्जन ले रहे हैं। पीयर प्रेशर एंड पब्लिक ओपिनियन, इसके हम इतने वशीभूत हैं इस टाइम कि हम इस तरह के डिसीजन लेने से भी डरते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आज अगर हम प्लैनेट को ग्रीन करना चाहते हैं तो सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं आज, लेट्स शिफ्ट टू अ वेजिटेरियन डाइट। सात्विकन, अगर हम सब आज प्रतिज्ञा करें, मुंबई से एक और लाइफस्टाइल चेंज पूरे देश को क्या सारे विश्व को कहे कि हम वेजिटेरियन, और वो वेजिटेरियन से हम पहले अपने मन को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर सात्विक अन्न हुआ तो हमारा मन सात्विक हो जाएगा, और अगर हमारा मन सात्विक हो गया और हमारा अन्न सात्विक है तो हमारा प्लैनेट ग्रीन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। कौन कौन जो सात्विक अन्न नहीं लेते हैं, तामसिक ले लेते हैं, रेडी है इस डिसीजन के लिए? आर यू रेडी टू शिफ्ट योर डाइट? सोचना है, जाने से पहले कर लेना। कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य, तो आज अगर दान कर लिया तो महापुण्य हो जाएगा। किस चीज का दान? अपने टेस्ट का दान, अपने उस एडिक्शन का दान। ये छोटी छोटी चीजों का दान करेंगे तो एक भी अगर परिवर्तन लाता है उसका प्रभाव कितनों पर पड़ता है, और एक एक के चेंज से सृष्टि बदल जाती है। तो आई थिंक प्लांट्स तो हम ग्रो करेंगे, जैसे स्वामी जी ने हमें बहुत प्यार से समझाया, हर घर में चार चार पांच पांच होने चाहिए, वो तो करना ही है। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट शुरू करते हैं, वी गोइंग टू बेनिफिट द एंटायर प्लैनेट।
थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल वर्ड्स। और सिर्फ हमें इसे एक मुहिम की तरह लेके जाना है, और इस मुद्दे पे बहुत बातचीत अभी बाकी। हमारे पास ऑडियंस से काफी क्वेश्चंस आए हैं ऑन आवर वेबसाइट, एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग दी सेम क्वेश्चंस विद आवर स्पिरिचुअल गुरुज टुडे। तो पहला क्वेश्चन आया है स्वामी रामदेव जी के लिए, गणपत कोठारी जी मुंबई से, वो यहीं पे होंगे कहीं। आई थिंक इफ ही इज हियर ही कैन रेज हिज हैंड। अच्छा, तो सवाल ये है कि आपको लगता है ग्रीन टैक्स लगाना चाहिए पर्यावरण को हरित बनाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल।
पहले इतने टैक्स लगे हुए, इस बारे में कुछ भी बोलना खतरे से खड़ा। तो हाँ, इतना जरूर है कि यह हमारी, मैंने कहा ना, वैयक्तिक सामाजिक और राजनीतिक सब धार्मिक रूप से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम कुछ मूलभूत, जैसे अभी बहन शिवानी जी भी बोल रही थी, कुछ ओथ, कुछ प्लेज, संकल्प व्रत लेके जाएं कि हमें ऐसा करना है। टैक्स का तो गवर्नमेंट डिसाइड करे, क्योंकि बहुत सारे सेस टैक्स लगाए हुए हैं। अभी जैसे हम, ये शिवानी जी बहन बोल रही थी अभी, शाकाहार क्यों? ये कुछ धार्मिक और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। 1 किलो गाय का, सुअर का, बकरे का, मुर्गे का मांस पैदा करने के लिए लगभग 100 किलो उसको अन्न या घास खिलाना पड़ता है एवरेज। और उस प्राणी को नहलाने धुलाने के लिए गाय को, सुअर को और दूसरी चीजों के, उसमें बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करना पड़ता है। तो एवरेज 1 किलो हम साग सब्जी खाते हैं, लौकी तोरई कुछ भी हमने खाया, और 1 किलो हमने मीट खाया, बीफ खाया, तो 100 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैला है, इसलिए नहीं खाना। बाकी उसका जीव दया, उसका हमारे मन पर, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रूरता होती है, क्रुएल्टी होती है। हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं और बहुत से वर्ल्ड समिट होते हैं वर्ल्ड पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, अंदर नॉन वायलेंस के लिए मीटिंग करते हैं, बाहर जाकर के मीट खाते हैं। नॉन वायलेंस की बात करने वाले मीट कैसे, भाई खाली नॉन वायलेंस खाली मनुष्य का ही नहीं ना, सबका सोचो ना ऐसे। तो मुझे लगता है आज टैक्स के ऊपर तो प्रश्न अच्छा है, बाकी हम ये सोचें कि मुझे क्या क्या करना है और इसमें, और उन व्रतों पर फिर टिकें। ऐसा नहीं कि आज यहां ताली बजा के चले गए, हाथ उठा के चले गए, और आज स्टॉक बहुत अच्छी थी, सदगुरु जी बहुत अच्छा बोले, और शिवानी दीदी ने भी कितनी गहरी बातें हमसे कही जिनके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, स्वामी जी ने भी हंसाया भी, बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी बताया, और लोकेश मुनि जी ने तो कमाल कर दिया ये आज का सेशन रख करके, इनके लिए भी एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दो। यहां आप सब आए हो ना, तो आपने ये चेंज शुरू करेंगे तो एक एक के साथ 100 200 500 हजार लोग जुड़े हैं, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हो। ऐसा नहीं है कि हम ही देश के 10 20 50 लोगों में गिने जाने वाले कोई बड़े गुरु हैं, आप भी हजार 2000 10000 50000 लाख 2 लाख के साथ जुड़े हुए लोग हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल सोल्स हैं यहां, बहुत प्रभावशाली आत्माएं हैं आप। मैं कितनों को देख रहा हूं यहां जो एक एक के पास 2 4 10 20 हजार लोग तो सेवाएं करते हैं वहां, उनसे स्वावलंबन पाते हैं, नौकरी सैलरी पाते हैं। हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी के कितने शिष्य बैठे हैं, हमारे मनोहर जी, तेजेंद्र सिंह जी, कितने लोग हैं यहां पर जिनके एक एक के साथ कितने लोग जुड़े। तो हम इन चीजों को आगे बढ़ाएं, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आज ठीक है, हमको बहुत मुश्किल होता है मुंबई आने के लिए, पूरा एक दिन लग जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम आए हैं। तो हमारा शिवानी दीदी का, पूज्य सदगुरु जी का आना, लोकेश मुनि जी का इतना बड़ा ये भव्य कार्यक्रम करना, मैंने सुना है यहां बहुत महंगा होता है, एक करीब 1 करोड़ रुपए तो इसका किराया, लाइटिंग, स्टेज सिस्टम, बाकी सब चीजों को करने में खर्च हो जाता है। ये 1 करोड़ रुपए से इस देश का 1000 करोड़ लाख करोड़ का फायदा हो तभी इसे आयोजन का करना मैं सफल मानूं। हम कुछ अपने अंदर बेसिक चेंज लेकर के जाएं और उनको निभाएं, कि जब हमको पता है कि एमएनसी जिस देश के लिए अच्छे नहीं है तो उनका बहिष्कार करें। मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं, बहिष्कार की बात कर रहा हूं, कुछ चीजों को छोड़ें, जीवन इसी का नाम है, जो ठीक नहीं उसको छोड़ दिया, जो ठीक है उसको पकड़ लिया, आगे बढ़े। जी कुछ प्रश्न
जी, बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, हम सबको पसंद आई, तो जोरदार ताली हम बजाएंगे। तो ग्रीन टैक्स के लिए फिलहाल मना कर दिया है, वरना हम सोच रहे थे माननीय प्रधानमंत्री को यहां से लिख के भेजे कि ग्रीन टैक्स भी आगे जीएसटी के साथ लग जाना चाहिए, बेहद जरूरी है आज के भारत के लिए। अगला सवाल मैं लूंगी आपसे आचार्य लोकेश जी, ये सवाल हमें भेजा है कमलेश मेहता जी ने न्यूयॉर्क से, कि आपका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था, खेती किसानी और प्रकृति को आपने बहुत करीब से देखा है, तो आज देश में कृषि और किसान पे पर्यावरण के साथ आप कैसे समझाएंगे या देखेंगे या नजर डालेंगे?
मेरे ख्याल से इस प्रश्न का भी स्वामी जी ज्यादा बहुत अच्छे से उत्तर दे पाते, पर मैं इतना कहूंगा, मैंने गांव में मैं जन्मा और बहुत करीब से देखा है मैंने। मैं महाराज स्वामी जी एक निवेदन करूं, हम जब छोटे बच्चे थे तो छोटे से गांव में बाहर जंगल में जाने का रिवाज होता था, और पिताश्री जब जंगल से वापस लौट के आते तो लोटा रेत से मांजते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके जब हाथ धुलाते थे, मुझे आज भी याद है, घी का ज्यादा प्रयोग किया तो कभी डांटी नहीं खानी पड़ी, पर जब खेलने का मन होता था और जल्दी से हम धार तेज कर देते थे पानी की, तो पिताश्री तत्काल डांटते थे पानी की धार कैसे तेज की। हमारे यहाँ ये चेतना रही है शुरू से। अभी स्वामी जी ने कहा था आप एक बाल्टी से भी अच्छी तरह स्नान कर सकते हो, और मनो टनो पानी बहाने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि आपकी पूरी स्वच्छता हो जाए। हमारे भीतर वो चेतना होनी चाहिए। जहां तक आज कृषि की बात है, स्वामी जी मैं देखता हूं आजकल प्रेस्टिसाइज का इतना उपयोग हो रहा है रासायनिक, और उसके कारण से मैं देखता हूं आजकल हर 10वां आदमी 20वां आदमी कैंसर से पीड़ित होता जा रहा है। बाजार में अगर आप, मुझे तो खैर खरीदने की नौबत नहीं है, पर देखते हैं भिक्षा में भी मिले तो बॉम्बे आएंगे तो हापुस आम है ना, यहां का अल्फांसो, अभी आप कोई भी पपीता खरीदिए आम खरीदिए, एक तरफ से इतना ज्यादा पक गया है और दूसरी तरफ से कच्चा है। कारण क्या है? कृत्रिम चीजों से, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों से। तो मैं एक तो गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी की बात और हमारी दीदी बीके शिवानी जी की बात बहुत सुनी जाती है, कि स्वास्थ्य के मद्देनजर इस पर जो है बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर्यावरण के विषय को एजुकेशन का, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। अभी मैं पढ़ रहा था, फिलिस्तीन की संसद ने बच्चा ग्रेजुएट करके निकले बाहर तो अगर उसने 10 वृक्ष का रोपण नहीं किया है उसको मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी।
इसमें क्या हो रहा है महाराज जी, हायर एजुकेशन में आप जो यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूं, यूनिवर्सिटी में अभी पर्यावरण एक आवश्यक विषय कंपलसरी कर दिया यूजीसी ने, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि 1 स्टैंडर्ड से 12th तक उसमें भी अभी एनसीईआरटी ने भी कंपलसरी कर दिया है कि आप पर्यावरण का विषय पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ सिविक एजुकेशन के बहुत से विषय हैं, उस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि आप पानी में डूबने लगे तो बचना कैसे, आप आग लग जाए तो बचना कैसे, सूरत में अभी पिछले दिनों हादसा हुआ हमने देखा, आप प्रतिकूल अवस्थाएं जाए तो आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। छोटी छोटी चीजें, पर्यावरण का विषय स्टडी में तो डाल दिया, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल जो सिटीजन बनाने वाली बात है उसके लिए सरकारें नहीं बना सकती रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। या तो हमारी तरह से आप लोग बच्चे पैदा मत करो, और यदि बच्चे पैदा करो तो ऐसे पैदा करो कि उनको सिखाने के लिए हमारे जैसे गुरुओं की जरूरत ना पड़े, चाहे हम बेरोजगार हो जाएं। अपने बच्चों की को रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, और ये बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी उम्र में नहीं संभलता आदमी, वो तो फिर जैसे हम शिवानी दीदी भी बोल रही थी ना, हम अपनी भीतर के खालीपन, अधूरेपन को, लॉनलीनेस को, इनकम्प्लीटनेस को भरने के लिए फिर चारों तरफ प्रकृति का संहार करने लग जाते हैं। तो एक तो ये चीज, खेती के बारे में जो बात थी, एक ग्राम मिट्टी में कम से कम 300 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, 300 करोड़। जैसे हम यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो सारे मर जाते हैं। इसलिए एक शब्द और कह रहा हूं, अहिंसक खेती। जरा मेरे साथ बोलिए, क्या बोला मैंने? अहिंसक व्यापार। जोर से बोलो, अहिंसक आहार, अहिंसक व्यवहार, अहिंसक विचार, अहिंसक समृद्धि, अहिंसक धर्म। ये बड़े शब्द हैं, इनकी व्याख्या करने में एक एक घंटे का समय लगेगा। अहिंसक धर्म, कुछ धर्मों में हिंसा भरी पड़ी है, वो धर्म कैसे हो सकते हैं जिनमें वायलेंस है ना, मतपंथ संप्रदाय। ये एक बड़ा शब्द है, और मैं चाहता हूं ये वैसे भी अहिंसा का मंच है, है? और ये इस फाउंडेशन का नाम ही है अहिंसा विश्व भारती। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये मैंने अहिंसा एक शब्द की व्याख्या की अभी, अहिंसक मैं इसके ऊपर बहुत सोचता हूं, जीता हूं, और उसको आचरण में लाता हूं। अहिंसक समृद्धि, अहिंसक खेती, अहिंसक विचार, व्यवहार, भाव, स्वभाव, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो हम उसमें स्वतंत्र हैं, और ये आज से ये एक्शन हमारा शुरू हो सकता है।
जैसे आपने कहा अहिंसा इज सो सेंट्रल टू आवर वर्ल्ड व्यू, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज बिलीव्ड इन, बट हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो इट एक्चुअली. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ, आई एम बीइंग फ्लडेड विद क्वेश्चंस फॉर सिस्टर शिवानी एंड आई विल टेक ऑल थ्री क्वेश्चंस रोल्ड इनटू वन बिकॉज आई थिंक यू विल प्रोबब्ली गिव वन आंसर फॉर ऑल थ्री. सो द क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम मनोज जैन फ्रॉम दिल्ली, राज राजेश्वर गुरुजी फ्रॉम लंदन एंड भव्या जी फ्रॉम पुणे. So they've all asked, what exactly is awakening? How can anyone become a realized being? A. Question number two, your clarity is amazing, Sister Shivani, and yet you are so young. What has your journey been like? Question number three, again going out to you, despite being a gold medalist, how come you came here rather than going into the material world? I'd like you to take this.
I don't know if any of the questions are relevant to environment, but still, when we look at spirituality, adhyatma, meditation, yoga, tapasya, तो हमें लगता है ये कोई जीवन का एक अलग पहलू है, और इसीलिए प्रश्न ही ये आता है कि पढ़ लिख लिया, कई लोग तो मुझे कहते हैं कॉलेज की एक सीट भी वेस्ट कर दी आपने, आपकी जगह कोई और ही इंजीनियर बन जाता. Because we feel कि वो पढ़ाई और वो सब कुछ जो आपने पाया उसको आप छोड़कर कैसे इस तरफ आ गए. तो हमने अपनी जीवन को और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग चीजें माना है, और कई बार प्रश्न ये कहा जाता है आप यहां जा रहे थे यहां कैसे चले गए, एज इफ इट्स टू डिफरेंट paths. एंड कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं जीवन में कौन सी ट्रेजेडी हुई थी जो यहां चले गए, क्योंकि अच्छे वाला नॉर्मल इंसान जब कुछ नहीं हुआ था तो यहां क्यों चले गए. तो दैट इज बिकॉज वी डोंट हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी मे बी कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है. अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट आत्मा, उसके जो निजी गुण हैं पवित्रता शांति सुख प्यार शक्ति और आनंद, ये आत्मा के निजी गुण हैं. जब हम इन निजी गुणों को अपनी सोच में अपने बोल में अपने व्यवहार में लेकर आएंगे तो स्पिरिट के ओरिजिनल क्वालिटी को जब कर्म और व्यवहार में लाएंगे तो वो पर्सनालिटी स्पिरिट के थ्रू होती है एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी. अ स्पिरिट पर्सनालिटी स्पिरिचुअलिटी. तो कई बार हम कहते हैं आई एम नॉट स्पिरिचुअल, ऐसा कोई है ही नहीं यहां बैठा हुआ हु इज नॉट स्पिरिचुअल, क्योंकि हम सबको शांति अच्छी लगती है, हम सबको प्यार अच्छा लगता है, हम सबको पावर अच्छी लगती है, तो हम सब स्पिरिचुअल हैं. लेकिन जिस क्षण हम उसके विपरीत संस्कारों को यूज करते हैं हम अस्पिरिचुअल हो जाते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक अलग जीवन जीने का तरीका नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ही जीवन जीने का तरीका है. विच मीन्स अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सही तरह से कैसे कॉन्सेंट्रेट करे, किस तरह से पीयर प्रेशर को हैंडल करे, किस तरह के वर्तमान एडिक्शन और अब्यूज से अपने आप को बचाए और किस तरह से बहुत सुंदर रिश्ते बनाए, उसके लिए उसको स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की जरूरत है. स्वामी जी ने अभी बहुत प्यार से कहा और शायद आपने उस पर पॉज करके चेक करे बिना ही ताली बजा दी, अहिंसक व्यापार बिजनेसमैन, ताली बजाई ना अहिंसक व्यापार पर. आपने पूछा ही नहीं उनसे कि अहिंसक व्यापार का मीनिंग क्या है. सो इफ माई बिजनेस इज विदाउट स्पिरिचुअलिटी देन माई बिजनेस इज ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है. जब वो व्यापार सिर्फ मुझे इससे क्या मिलने वाला है वो धन कमाते हैं. स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो बिजनेस मैंने किया उससे आपको कितना सुख मिला, उससे मैं दुआएं कमाऊंगी, वो अहिंसक व्यापार. तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज के बिना नहीं आ पाता है, स्पिरिचुअल पावर के बिना नहीं आ पाता है. तो चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो जस्ट हमारी फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन जीवन के हर पहलू पर काम आता है. तो वन थिंग वी कैन चेंज टुडे कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग रास्ता नहीं, स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर पहलू में सही सोचने का और व्यवहार करने का तरीका है. एंड उसकी एज कौन सी है? व्हाट्स द राइट एज टू स्टार्ट मेडिटेटिंग? कौन सी एज से करना चाहिए? क्या लगता है कौन सी एज से करना चाहिए? कौन सी एज से करना चाहिए मेडिटेशन? ज्ञान का चिंतन, मनन और अध्ययन, ध्यान और योग और तपस्या कौन सी एज से करनी चाहिए?
बचपन से.
थोड़े दिन पहले हमारे पास रिट्रीट सेंटर पे एक भाई आए, मिड 40s. ऑफिस में जब छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उनको कहा मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा रहा हूं, तो सीनियर ने कहा इजंट इट टू अर्ली? ही सेड सर आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट. तो आत्मा को जब अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और अपने ऊपर संयम और आंतरिक खुशी का अनुभव करना है, उस क्षण से आत्मा इस जर्नी को स्टार्ट करे. और जब अंदर से संतुष्ट होंगे तो पर्यावरण से छीनेंगे नहीं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, पर्यावरण को नर्चर करेंगे. अपनी नेचर से हम पर्यावरण को नर्चर कर सकते हैं.
थैंक यू सो मच. वंडरफुल इंडीड. स्वामी रामदेव जी, टू आंसर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भेजा है हमें अपर्णा जैन ने कानपुर से, और सवाल इनका ये है, गुरुजी आपसे कहना चाहूंगी. ये कहती हैं कि 4 साल ऐसे कहा जाता है बचेंगे अगर बम्बल बी इस अर्थ से गायब हो जाए, हनी बी या बम्बल बी जिसे हम कहते हैं, अगर मधुमक्खी चली गई तो केवल 4 साल बचेंगे इस पृथ्वी पे ह्यूमन बींग्स के लिए. क्या ये सच है? ये जानना चाहती हैं.
आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता भेज देता. खैर, प्रकृति में ऐसे अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा. तो नेचर बहुत बलवान है. इसको जो क्वांटम फिजिक्स पढ़े हैं आप में से थोड़ा बहुत जानते हैं, क्वार्क से लेकर के एक एटम से लेकर के, और जो बड़े बड़े इस तत्व हैं इस सृष्टि में, उनका एक एक की इतनी महिमा है. पहले तो कुछ भी ना, मधुमक्खी नष्ट होने वाली, ना सांप नष्ट होने वाले, और साइकिल से जैसे डायनासोर्स नष्ट हो गए, जिस दिन जरूरत नहीं होगी अपने आप नष्ट हो जाएंगी. प्रकृति की चिंता मत कीजिए, मधुमक्खियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसको आप इस पर परेशान मत होइए. आप ये सोचिए मुझे क्या करना है. हम लोग ना बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दार्शनिक हो जाते हैं इन चीजों से निकल करके. मुझे क्या करना है, जैसे बहुत से लोग हैं कि जी क्या करें, एक फैमिली बिजनेस है. अब हमारे बहुत से जैन भाई हैं जो गुटखा बेचते हैं, बहुत से जैन परिवार हैं जो बियर बेचते हैं, दारू का बिजनेस चलाते हैं. कुछ एक का तो बिजनेस उसका था कत्ल खाने का. मैंने कहा भाई तुम जैन मत लिखो पीछे अपने, इससे जैन शब्द बदनाम होता है. ये गलत बात है ना. अहिंसक व्यापार का मतलब उसमें आपकी भोगवादी दृष्टि तो होनी नहीं चाहिए कि मेरे पास जो अर्थ है वो परमार्थ के लिए है. नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, ये अर्थ परमार्थ के लिए ही है. देखो, एक पूज्य स्वामी शरणानंद जी बहुत बड़े संत हुए प्रज्ञा चक्षु, वो कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, बुद्धि है, जितने भी भौतिक तत्व हैं हमारे पास, ये सब सेवा के लिए, इनका और कोई प्रयोजन ही नहीं है. ऐसे ही हमें सोचना होगा कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है, उसका उस सब का प्रकृति पर क्या असर पड़ रहा है, उसका इस समष्टि पर क्या असर पड़ रहा है, और उसको जो मैं कर रहा हूं, हम ये जो नंबर्स को बढ़ाते हैं कि मेरे पास आज लाख है, करोड़ है, फिर 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, नंबर्स का गेम जो है ये लाइफ नहीं है. जीवन इससे परे है. जीवन मैं क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस पूरे अस्तित्व के लिए. सारा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य करता है, धरती से लेकर के सूर्य चंद्रमा से लेकर के. एक ये भी दृष्टि है जो अभी पूज्य लोकेश मुनि जी ने कही कि इस सब में भी जीवन है। एक यह भी दार्शनिक पक्ष है हमारा कि पृथ्वी भी एक जीव है, सूर्य भी एक जीव है, जल भी एक जीव है। जो समष्टिगत जल की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा ये दर्शन है। हमारी
हमारे साथ मौजूद हैं इंदु जैन जी, ग्रुप चेयरमैन बेनेट्स कोलमैन लिमिटेड। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। शी इज रिटन अ वंडरफुल बुक कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सेंट्स एंड सेजेस, एंड वी आर इंडीड गोइंग टू लॉन्च द बुक राइट नाउ।
अभी
वी आर प्रिविलेज टू हैव यू
जैनिज्म की बात कर रहा था तो इंदु जैन माता आ गई। आइए माता जी,
बहुत शुक्रिया। एंड कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज for the group chairman of Bennett Coleman Limited, Indu Jain ji, who's joining us on stage.
Pujya Swami ji ka, B.K. Shivani ji ka sanidhya, aur hamara keval Jain samaj ka hi nahi, Bharatiya sanskriti ka gaurav, Times of India parivar ki chairperson, aur unhone santon par jo granth likhe hain, पहला संस्करण कुछ वर्षों पहले आया, दूसरा संस्करण आज हमारे सामने आ रहा है, और आज स्वयं इंदु जैन जी यहां पर उपस्थित हैं। हम सभी जो हैं, जब स्वामी जी जैन दर्शन की, जैन धर्म की बात कर रहे थे, और उसी समय इंदु जैन जी का प्रवेश हुआ, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया।
हाँ। जी अगला सवाल आपसे ही आचार्य जी, यहां पर मैं जानना चाहूंगी, आपके लिए ये सवाल किया है रिजवान जी ने हैदराबाद से, और वो ये कहते हैं कि CO2 emissions की लेवल एंड ओजोन की लेवल को किस तरह हम बचा सकते हैं, इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए रिजवान आरतिया का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जिस तरह से ओजोन की छतरी को नुकसान पहुंच रहा है, और आपको पता है उससे क्या होने वाला है, उससे निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणें धरती पर जब पहुंचती है तो हमारे ये सारा स्किन कैंसर से लेकर के, सवाल ये है कि उस समस्या का समाधान कैसे हो। हमें समाधान के लिए सोचना है, ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? ये बड़े बड़े शहरों में जो सीमेंट की, कंक्रीट की जो इमारतें खड़ी होती है ना, आपको पता है 1 किलो सीमेंट जिस समय आप उपयोग करते हो और उससे जो प्रभाव पड़ता है, आपके फ्रिज से निकलने वाली गैस है, आपके गाड़ी से निकलने वाली गैस है। अभी स्वामी जी ने कहा कंप्यूटर मोबाइल, आपको पता है छोटी छोटी बातें, आपने देखा होगा जब चार्ज करते हैं गर्म हो जाता है, और कभी कभी तो सोने के बगल में जब रखा जाए और रात भर उसको चार्ज पे लगाए फट जाए, साथ में खोपड़ी और फट जाती है। कहने का मतलब, जिन तत्वों से ओजोन को नुकसान पहुंचता है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली को इको फ्रेंडली बनाना होगा, पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा, तभी जाकर के इस दुनिया की तबाही बच सकती है। पिछले महीने ही इंग्लैंड के अंदर सड़कों को जाम करके संसद को मजबूर किया इस मुद्दे पर इमरजेंसी घोषित करने के लिए, जबकि अगर हमारे यहां अगर आप देखो, स्वामी जी महाराज निवेदन कर रहा हूं, दीपावली के आसपास अगर कोई दिल्ली आ जाए ना, तो 100 सिगरेट का धुआं तो ऐसे ही उसके फेफड़ों में चला जाता है। इतना एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, पर्यावरण का पॉल्यूशन है, और इन सब से जो नुकसान पहुंचता है, जो हमारी सुरक्षा का कवच है, तो हमें, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे स्वामी जी ने कहा, और मैं जिन गुरु के हाथों दीक्षित हुआ, आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम राष्ट्र समाज विश्व की बात करें, किंतु उसके लिए शुरुआत खुद से करें। अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से हम खुद से खुदा की यात्रा को भी ठीक से कर सकेंगे।
बहुत खूब, बहुत सुंदर जिस तरह आपने समझाया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज आउट टू यू सिस्टर शिवानी, and this is by Pradeep Shaili ji, who's I think sitting here somewhere, and he wishes to know how we could sensitize people to become vegetarian and to kind of protect this earth further.
Jab
हमारे घर में किसी की डेथ होती है, फैमिली मेंबर, घर में जब शव पड़ा होता है तो घर में खाना नहीं बनता, राइट? हाउ मेनी फील दैट्स द वे वी लिव? यस, घर में परिवार का सदस्य है लेकिन अगर वो बॉडी पड़ी है तो खाना नहीं बनता। अंतिम संस्कार होने के बाद सबसे पहली चीज क्या करते हैं? वहीं पर हाथ धोते, मुंह धोते, घर आते स्नान करते, किचन को भी धोते हैं और उसके बाद खाना बनता है। अपने परिवार के सदस्य की बॉडी पड़ी हो और खाना नहीं बनता और फ्रिज में देखो किसकी इसकी बॉडी पड़ी है।
आचार्य लोकेश जी, आपसे ये अगला क्वेश्चन है मीना जी का फ्रॉम बेंगलुरु कि ये जो गैस चेंबर बन गया है जहां आप रहते हैं, खासकर दिल्ली की बात अगर की जाए, दैट्स बिकम अ फर्नेस। सदगुरु वॉज टॉकिंग अबाउट मुंबई। आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू गेट अ एक्ट टूगेदर इन द नेशनल कैपिटल दैट इज इन डीड बिकम अ फर्नेस। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर पूज्य स्वामी जी दे, और क्योंकि स्वामी जी का बहुत ही विषय है इस मामले में। स्वामी जी ने देखिए खेती के मामले में, जैविक खेती के मामले में बहुत बड़ा कार्य किया है, और अभी उन्होंने इस तरह के चाहे किसी भी प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रकृति को बचाने के लिए, और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अर्थ को भी कैसे परार्थ और परमार्थ के लिए जोड़ा जा सकता है। मैं समझता हूं स्वामी जी के लिए इस बात के लिए हम सभी अभिनंदन करें, क्योंकि जब तक स्वार्थ की चेतना विगलित नहीं होती है तब तक परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। बीके शिवानी जी फिर दिल्ली से चल के इस कार्यक्रम में आए, और कार्यक्रम में भी आपको पता है सबसे पहले 5 बजे यहां पर पहुंच गए लगभग। कारण क्या है कि इन सब का भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया। आप आश्चर्य करोगे, शायद विश्वास भी न हो, इस समय पतंजलि योग पीठ के अंदर पतंजलि परिवार की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। देश भर से 5000 लोग वहां इकट्ठे हुए हुए हैं। मैं जैसे उदाहरण दूं आपको, ये अहिंसा विश्व भारती का कार्यक्रम यहां चल रहा है और मैं यहां से उठ के हरिद्वार चला जाऊं कितना कठिन होता है। उसके बाद जो स्वामी जी आए, क्योंकि इनके भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया और केवल परार्थ और परमार्थ के लिए सोचते हैं, और जब तक स्वार्थ विगलित नहीं होता है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, वो मैं रमेश भाई को भेज रहा हूं 5 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा रे मैंने जो 5 लाख रुपए दिए थे ना रमेश को भेज रहा हूं दे देना। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हो तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है ना, परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। हालांकि पतंजलि ने बहुत बड़ा साम्राज्य, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, किंतु मुझे पता है स्वामी जी के बहुत निकट से जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, एक सिंगल कॉइन जो है व्यक्तिगत भोग और उपयोग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, और जितना भी अर्थ जो है वो परमार्थ के लिए लगाते हैं। तो बंधुओं और बहनों, में अधिक लंबा समय इसको ले जाए बगैर, क्योंकि कार्यक्रम का एक दूसरा मोड़ टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार का प्रकाशन सामने आएगा, और उससे पहले एक बहुत बड़ी बात, इस कार्यक्रम में जितने लोग मौजूद हैं वो अभी स्वामी जी से, बीके शिवानी जी से शपथ तो लेंगे ही, लेकिन ये इंटरनेट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जो करोड़ों लोगों तक बात पहुंच रही है, वो वहां बैठे बैठे शपथ लेने जा रहे हैं। और दूसरी बात आपको कहूं, सुन के आपको फख्र होगा, गौरव होगा, हमारे बीच में भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के वीर सैनिक और वीर चक्र विजेता कर्नल टीपी त्यागी यहां पर मौजूद है। ये केवल यही नहीं, इनके राष्ट्रीय संगठन के
89,000 मेंबर हैं, उनके प्रतीक के रूप में जितने यहां पर उपस्थित हैं लगभग 89 से अधिक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और इन्होंने मुझे लिख करके दिया, ये संकल्प कर रहे हैं कि ये सारे के सारे 89,000 पूर्व सैनिक राष्ट्रभक्त नागरिक ये इस वर्ष जो है एक महीने के हिसाब से एक पेड़ केवल लगाएंगे ही नहीं, उसकी केयर करना, यानी 89,000 × 12 अकेला बीड़ा वीर सैनिक इस परिवार ने उठाया है और करोड़ों लोग लाइव कार्यक्रम के द्वारा आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज जो करोड़ों लोग लाइव शपथ लेना चाहते हैं, मैं परम पूज्य स्वामी जी से, हमारी आदरणीय बहन बीके शिवानी जी से और हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार की चेयरपर्सन, हमारी सबकी गार्जियन हिंदू जैन जी से कहूंगा कि खड़े होकर के सामूहिक रूप से ये शपथ जो करोड़ों लोग लेना चाहते हैं, इस पंडाल में जो लोग बैठे हुए हैं, आज यहाँ एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। मुंबई की धरती से लेकर के बर्लिन तक ये संदेश जा रहा है कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए मिनिमम हम क्या कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य स्वामी जी से, आदरणीय बहन से, कि वे खड़े होकर के सबको शपथ दिलाएं।
Let us make this pledge and an honest endeavor to live up to it. Ladies and gentlemen, we go in for the Hindi pledge first. May I request Acharya Lokesh ji and Ramdev ji to please take this pledge. Please repeat after them, and may I have you having your right hand in front, please. Symbolic of the pledge that you take today. Over 1,01,000 people taking this pledge all over Mumbai, and million trees planted today.
चलिए आइए सभी दाएं हाथ सामने करके और हमारे साथ साथ बोलेंगे। सब हिंदी जानते ही हैं, इसलिए दो दो भाषाओं में संकल्प की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर के ये संकल्प ले रहे हैं और ये ऐसे संकल्प हैं जिसको हम सब निभा सकते हैं। पांच संकल्प हैं, सभी मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे। प्रति वर्ष
एक से अधिक
पेड़ अवश्य लगाएंगे,
अवश्य लगाएंगे,
तथा देखभाल भी सबका, इसलिए मैंने इसमें बहुवचन कर दिया है, तथा देखभाल भी करेंगे
पानी
बिजली
पेट्रोल आदि
प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करेंगे प्लास्टिक का
ना उपयोग करूंगा,
ना जलाऊंगा
ना दुरुपयोग करूंगा। अभी तो इतना ही कर लो, फिर निभाने में दिक्कत आएगी। देखो जो अब मैं बोल रहा हूँ और उसको मैं ना करूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। प्लास्टिक का ना दुरुपयोग करूंगा, ना जलाऊंगा, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले संसाधनों को क्रमशः कम करेंगे, अपने जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। भारत माता की जय, प्रकृति माता की जय।
अब मैं सिस्टर शिवानी से निवेदन करूंगी कि आप इंग्लिश में प्लेज कराएं।
हमें लैंग्वेज तो दोनों ही आती है, लेकिन दो बार बोलने से रीअफर्म हो जाएगा। आई विल प्लांट मोर देन 1 tree every year, and I will also care for it. Feel करके बोलते जाइएगा और उस दृश्य को देखते जाइएगा कि हम एक पेड़ लगाएंगे और पूरा साल उसका ध्यान भी रखेंगे. I will not waste the natural resources like water, electricity, petrol and others. I will not use plastic. So Swamiji changed it a little bit and said, I will not overuse plastic. And I will not burn it. I will reduce the use of equipment that generates pollution. I will make my lifestyle environmental friendly. Thank you.
Today has been a very landmark event where we have all gathered as a community to work towards a larger cause, the sustainability and harmony of Mother Earth, the World Environment Day. Thank you everyone for your contribution to our shared cause. It is my pleasure to take the stage alongside these wonderful spiritual gurus, Pujya Shri Sadhguru, of course he's not here, Pujya Swami Ramdevji, Acharya Lokeshji, and respected Didi Shivani Ji, and other dignitaries present here today. Today we have heard enlightened insights from spiritual leaders, experts, on how spirituality is important alongside environmental protection and it for the peace and harmony of Mother Earth. It is especially heartening for me, as one of my core beliefs is when we nurture nature, nature nurtures us. And this is the message that we've got from our spiritual stalwarts here. The guidance provided today by our spiritual leaders will certainly help us to accomplish this with efforts that will make Mother Earth a cleaner, greener, habitable place to live. An event of this magnitude evolved the work that is gone behind it and the coordination and the teams behind it, the volunteers. I must, on behalf of Ahimsa Vishwa Bharati, recognize the efforts and thank all of them for making such a big effort. This includes the team from Ahimsa Vishwa Bharati in Mumbai, Isha Foundation, Patanjali Foundation, the Brahma Kumaris, and their followers and families, and the management and staff of DOME at NSCI, and all the members of the Ahimsa Vishwa Bharati family, and the media, and of course the Mumbai police. Together you have all contributed to this event's success and are also contributing to the sustainability of Earth. Today the collective wisdom of our spiritual leaders and event participants, you all, has brought us closer to our goal of creating a sustainable, harmonious world for our present generation and the next. Let's remember the blessings we have received and pay it forward. It's important to be part of the solution and not part of the problem. And this was the message given to us today.
Wonderful.
So let's forge ahead.
And on this note, let us pledge for a cleaner, greener earth today.
Awakening.